Live from the Navadvip Brahma.
Jnananjana Samapya Chakshuram Yilipanyena Tasmai Shri Gurave Vancha Kamsakaru Vrashya Kripasam Bhutyayevaca Satisamam Pavanekshya Vaishnava Namo Mahaprasannaya Krishna Prema Pradaya Krishna Krishna Chaitanya Namne Gaura Kuse Kame Gaura Chandaya Rabhikaya Sadaya Krishna Ya Krishna Bhaktaya Sadabhaktaya Yam Paprajan Sarante Samatru Kutikam Vaitam Nodhiyaka Kutre Sitan Maitra Sarvo Kunegu Sam Sarvo Bhuta Vijayam Bhuna Sahari Vasmi Sahari Vasmi अस्मदीय सर्वाराध्यतम गुरु का स्वर्णित करीगा प्रविष्ट ओम विष्णु का कृष्ण शक्ति प्रत्यान के सब चरणों पर चरण कमल हो सत्सांग गणपति प्रगति पुष्पांजलि अर्पित होता तपस्या सर्वाराध्यतम अपनी शिक्षा जो भक्ति बामन गोस्वामी महाराज के साथ और अपने शिक्षा में श्रीमद भक्ति के नाम स्वामी महाराज जी के चरण खंडों में कोटि कोटि बार श्रद्धा प्रणवत स्थान लेंगे तत्पश्चात आगामी तिरंगी पार वैष्णव वैष्णवी सत्यव करा समुद्र गढ़ चंपा प्रकाश और फिर विद्यानगर होकर के ऋषि तीर्थ होकर के यहाँ दिखाने के उपस्थित हुए समुद्र गढ़े कथा उठाने अपना श्रवण करे को दिखे हम सारा से समुद्र गढ़ी समुद्र के खाने से गंगा पर्यंत महाप्रभु लीला दर्शन कर और गंगा के बल में तुम्हें सर्व सौभाग्य होगी ये समारोह खुले थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंदर बहुत रूपे थे এখানে তো লীলা বিলাস করছে অর্থাৎ তুমি বললেন শীঘ্রই তিনি সন্ন্যাস নিয়ে তোমার ওখানে যাবে আর ওখানে তোমার সমস্ত খুলেছে বহু কিন্তু সমুদ্র গঙ্গার ছেলে সমুদ্র এসে আর সমুদ্রের সঙ্গে সম্বন্ধে ভগবানের একাধিক ভক্ত প্রাচীন ভক্ত সমুদ্রকে কৃষ্ণে সমুদ্র কে নবদ্বীপে যে মহাপ্রভু পরিকর আপনাকে তো যেতে পেয়ে তার ভক্তি সমুদ্র সে ভক্ত লোক ঈশ্বরের মাধ্যমে কৃষ্ণকে ওই কালীকে দর্শন করেছিল সে সমস্ত কথা ওখানে রসানন্দ প্রভু ইত্যাদি আমাকে এইসব কথা বেশ হয়েছে আমাদের সময়তে আমি আজকে বিক্রম মহারাজের হত যে নাথন মহারাজ মহারাজ খালি দিকে কথা তারপরে আপনারা চম্পক পাটকে আসলেন সেখানে জয়দেব গোস্বামী অর্মুখ ভক্তির কথা আক্রমণ করে থাকবেন জয়দেব গোস্বামী ওখানে ছিলেন নির্বাচনে আর ভাবিতে আসলো সরকারি মাল করেছেন আর সেই মালকে দুর্গার বাড়ছেন কৃষ্ণ তিনি কিরকম ভাবে হাত পড়ানো চলছে তার মূর্তি চলছে রেখে দিয়ে চরণে পুস্তক বন্ধ করে দিয়ে আর গঙ্গা কিনারে চলে দিল ওখান থেকে গঙ্গা নিকটে এক দু মাইল ওখানে গিয়ে আর ইতিমধ্যে কৃষ্ণ তার ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন তার স্ত্রীকে বললেন আমার একটি কথা মনে পড়ে এসেছে, তুমি বইটা নিয়ে অনেকটা লিখে দিয়ে সে বই এনে দিয়েছে আর সে লিখে দিয়ে লিখে আছে তোমার ভারতবর্ষের স্নান করে আপনি মাঝখানে লিখে দিয়ে দিয়েছে আবার করে ও আমি আছি নাই তো আমার এখানে সন্দেহ ছিল আর আপনি সেই সন্দেহ সন্দেহ করে দিয়ে আর আপনি তখন তুমি কর্মসমতি তুমি কৃষ্ণকে দর্শন করবে আমি তারপরে মহাপ্রভুর ইচ্ছাতে তিনি আবার চলে গেলেন জগন্নাথ গীত গোবিন্দের পর কৃষ্ণ স্মরণ জগন্নাথ পুরীতে একবার
তারপরে আপনারা বিদ্যানগরে গিয়েছিলেন
ওখানকার কথা সব তিনি শুনলেন। সব বিদ্যা যে মূল পুরুষরা ওখানে গিয়েছে আর ওইখান থেকে শিখেন তারপরে সব মহাপ্রভু ওখানে যে গেছেন তার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু ছিলেন বিশারদ মহেশ্বর বিশারদ। মহাপ্রভু ওখানে গেছেন তার কম ভট্টাচার্য আজকের থাকতে তার কম কিরকম ছিলেন যখন ওখানে ছিলেন তখন মিথিলাকে দিয়েছিলেন রক্ষার ন্যায় শিখুয়ার জন্য। যখন শিখা হয়ে গেল তখন ওখানকার বন্ধুকে নিয়ে আসতে চান ওরা জেনে সব বৈগুলিকে আসতে চান নিয়ে ছিনে নিলেন। তখন তিনি ওখান থেকে বেরিয়েই আবার সেদিন স্মৃতিকে সমস্ত গ্রন্থগুলিকে লিখে দিচ্ছে আর নিয়ে আসেন নদীপেতে নব্বট ন্যায় আরম্ভ আর পৃথিবীতে কোন জায়গাতে নব্য ন্যায় নদীপের হবে এইসব করে কথা হয়েছে। আজকে সবিতা না সবিতা আরো তো দু চার কথা ও মহাপ্রভু তার বৈশিষ্ট্য
Oh, you're here, no? Hello, you're able to hear?
No problem.
We visited
the home places of Shumudra, Champa, then coming back to Vidinara, to the island of British Wings, we returned back here. There in Shumudra, the ocean is the husband of all the rivers, to the Ganga. Oh, Ganga, you are most fortunate because of the Supreme Personality Godhead, Swami Bhagavan, Sri Gaura Sunda. He will perform, take bath and perform lilas in you. Then Ganga also replied to the ocean, you will also be fortunate because when Gaurana Mahaprabhu takes the mass and goes from Madhavi, he will go to the bank of the ocean and you will perform many astonishing leaders full of rule of separation there on your bank. There also was the astonishing guitar between Samudra Sen and Bhim Sen. Bhim Sen is a very old devotee, a parika, an associated worker. And Samudra Sen is a parika of Sri Nalavikdam. There by the master Bhim Sen, Samudra Sen had darshan of Krishna. And there is a very astonishing katha. Guru said he's remembering when himself, Sri Chirika Maharaj, Sri Pujipad and Adi Maharaj would have all types of discussion there. Then we went to Champakata. There is the place of Sri Jaya Goswami. There he composed Sri Deep Govinda. And there, in Deep Govinda, he was describing Radharani, very Durjai man, a very strong, rude man towards Krishna. In his meditation, he saw that Krishna, in order to break the man of Radhika, was offering his flute, offering his peacock feather, offering his pitamba. So finally, he offered his head at the feet of Radharani. Then Sri Jaya Goswami hesitated. Krishna is Bhagavan, Sarva-Shakti-man, the possessor of all potencies. How is it possible that his potency, Radha, will put one feet upon his head? Therefore he closed the book and he went to cool his head by taking bath in the Ganga. Meanwhile, Krishna himself came in the form of Jayadev and said to Padma, the wife of Jayadev, oh, I want to finish writing that book. Therefore bring my book and in golden letters Krishna completed the verse. Smaragara Mandanam, Chiriti Mami, Chiriti Mama Mandanam, Dehi Mandanam,
Ganga.
When Krishna left, then again Jayadev Goswami came. Then his wife Padma asked, you are coming and going, why? You just went a minute ago, you came back, you wrote something, now again you left, now again you're coming. Then Jayadev Goswami said, no Devi, I don't know anything, what you're saying. Then he saw the writing of Krishna, he began weeping. I had a doubt, but Krishna, you cleared that doubt with your own hand. Therefore Jayadev Goswami fell at the feet of Padma, saying, you are fortunate, you are Darshan of Krishna, I could not get that good fortune. Then on the desire of Chaitanya Mahaprabhu, he left Navadvip and went to Jagannath Puri after writing the Govinda. There one night when Jagannath Dev was hearing the composition of the Govinda, he became restless and he went, he opened the doors of the temple and ran there to hear. As he ran, the bare stones scratched his body and his cloth. In the morning, Pujara could see the scratches on the mark of Jagannath, and then he became filled with bewilderment. But Jagannath appeared in his dream and explained the situation. Kali Sala Lisa Bandaman, Haki Govinda is filled with the glory of Srimati Radhika in a hidden way. Therefore, when Chaitanya Mahaprabhu also heard that he believed that, he also ran towards the thorn to embrace the singer. And Govinda said, oh Mahaprabhu, it's a woman. Then Mahaprabhu controlled himself and said to Govinda, oh Govinda, you saved my life. If I had embraced a woman, I would have had to commit suicide by giving up my life in the ocean. Therefore this deep Govinda is a Rasayan, a nectar-giving tonic. It is full of the glory of Srimati Radhika. Therefore even today at night time, no one is able to sing Hi Govinda within the precincts of Jagannath temple due to fear that Jagannath may run again. Jayadev Goswami also has darshan of Chaitanya Mahaprabhu there in Jagannath Puri. Therefore the Hi Govinda is so much famous, even today in Orissa, his kirtan and his padyavali is sung and preached everywhere. Then we went to Vidyanagara. That is the place of Sapamal Bhattacharya and also the friend of Jagannath Vishwa named Maheshwar Vikrasa. There Sapamal Bhattacharya composed his Navya Maya, his new thesis on logic and argument. So today we went to all those places. Both them are not.
Thank you.
गुरु जी के चरणों में वैष्णवों के चरणों में जो बैठ कर सुना और पढ़ा उसी मन से जो एक बात कहकर भावभीनी श्रद्धांजलि गुरु जी के चरणों में समर्पित करने की कोशिश करूंगी। गुरु महाराज जी आदेश दिए कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा चैतन्य महाप्रभु का औदार्य और उनका वैशिष्ट्य महाप्रभु के विषय में हम लोग 5 दिन से लगातार 6 दिन से लगातार सुन रहे हैं। परसों गुरु महाराज जी ने बताया महाप्रभु क्यों आए थे, राधा महिमा की शोभा अर्थात श्री कृष्ण के रूप में उनकी 3 वंशाएं पूर्ण नहीं हो पाई थी, इसलिए अपने उन 3 वंशाओं को पूर्ण करना चाहते थे। वह 3 वंशाएं श्री कृष्णानंदनी राधा रानी के मदनाथ भाव क्षेत्रीय राधा जी का भाव है, उनके बिना उनकी जीवन इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती थी, इसलिए श्री शांतनुगर ने प्रार्थना की राधा जी से। राधा जी जानती थी कि मेरे भाव को ये सहन नहीं कर पाए थे, बहुत उनको मना किया, परंतु श्री श्याम सुंदर तो चोरी में निपुण थे, इसलिए श्री विष्णानी नंदनी का उन्होंने वाम भाव अर्थात मदनाथ के महाभाव को उन्होंने आस्वादन करने के लिए चोरी किया। श्री राधा जी गुरुदेव ने ही एक बार जगन्नाथपुरी में हम लोगों को पढ़ाया था, जब भाव को उन्होंने ले लिया राजा जी समझ गई, राजा जी ने सोचा अभी हमें मेरे भाव की महिमा उन्हें पता नहीं, जब मैं हाथ कृष्ण करके पृथ्वी पर गिरती थी तो मैं सहन कर लेती थी पृथ्वी की चोट को, प्राण रस तो बहुत ही कोमल है उसको भाव को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने ही अंग क्रांति से अपने प्राण रस की अंग क्रांति को ढक लिया। क्यों? क्योंकि जब वे मेरे भाव को आस्वादन करके महाभुजा इत्यादि भावों का आस्वादन करेंगे और पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरेंगे तो वह उनकी शरीर की रक्षा करने के लिए अंग क्रांति के रूप में श्री विश्वानंदनी ने पहले की प्राण रक्षा करने के लिए उनकी शरीर से निपट गए, इसलिए गौर सुंदर जी गौर क्रांति से और नाम कराया गौर। उसी समय जिस समय महाप्रभु पृथ्वी पर आविर्भूत होने वाले थे परिचर आए साधु नाम बिना नाम, यह भी एक कारण उपस्थित हो रहा था। तीसरा कारण था कि काय जगत में भक्ति लुप्त हो रही थी, कर्म मित्रा ज्ञान मित्रा गुणी भूता कलानी भूता इत्यादि भक्ति के द्वारा प्रभु की आराधना की जा रही थी, महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैताचार्य जी को बड़ा कष्ट होता था, उन्होंने अपने प्राणनाथ की अपने आराध्य देव की तुलसी और गंगा जल से आराधना करके बुलाने के ऊपर बुला रहे थे अर्थात उपासना कर रहे थे, यह तीसरा कारण था। और चौथा कारण गुरु जी बताते हैं करने और तीन कलम समय हरी कदम सदा पूरी तरह नंदन जो शुद्ध भक्ति विलुप्त हो चुकी थी था उनका, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु राक्षस
दीक्षा का मतलब होता है जिससे हम ज्ञान दिलाते हैं, इसी दीक्षा
अर्थात जिस ज्ञान माने में यहाँ पर सब लोगों का संबंध जो जन्म जन्मांतर से छूटा आया है, जन्म जन्मांतर से जो ढक गया है हमारा संबंध उस प्रभु से के द्वारा मंत्रों के द्वारा उस संबंध को स्थापित कर देते हैं और उस संबंध को बना देते हैं। हमारे बड़े विष्णुओं का संबंध है मदीसा नाथक से विपिन चंद्रम, हमारी विष्णुनंदनी ही आराध्या है, हमारी विष्णुनंदनी राधा रानी ही हमारी विदेश्वरी है, वही हमारी एकमात्र आराध्य है। उनके जो प्राण कीर्तन राधा समर है, रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, हमारे श्री विष्णुनंदनी के प्रियतम है, ऐसा वे संबंध शिक्षा के माध्यम से देते हैं। जब दीक्षा देने के बाद में यह दिव्य ज्ञान एक दिन में उपलब्ध नहीं होता है, अगर साधन भजन किया जाए, गुरुवर्तियों की सेवा किया जाए तो एक ही जन्म में इस संबंध की उपलब्धि हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसको हम लोग नहीं कर, मैं अब आप लोगों की बात नहीं है, तो मैं अपने हृदय की बात बोल रही हूँ कि हम मैं तो कर नहीं पाती, इसलिए हम लोगों की इसको उपलब्धि नहीं है कि एक जन्म में भी गुरु प्रदत्त संबंध की हम लोग उपलब्धि कर सकते हैं। गुरुदेव दीक्षा देते समय संबंध देते हैं, उस संबंध के अनुसार दिन रात साधन भजन करते हैं। यही साधन भजन रघुनाथ गोस्वामी जी ने, गोस्वामी जी ने और सब गोस्वामी वर्गों ने भी पुस्तकों में हमारे लिए उचित प्रसाद रख दिया है कि कैसे साधन अब गुरु प्रगत, अब गुरु जी का जो काम शुरू हो गया कि उन्होंने हमको शिक्षण देकर संबंध स्थापित कर दिया, अब काम से उस संबंध को किस साधन भजन के द्वारा उपलब्ध करें। यही चैतन्य महाप्रभु की प्रधान शिक्षा गोस्वामी वर्गों के द्वारा हमारे तक आती है। साधन भजन करते करते हम लोग अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया शुरू होती है, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद में निष्ठा बुद्धि हो जाती है, तू और जाए की भावना आ जाती है, करूंगी मर जाऊंगी छोड़ूंगी नहीं, यह भजन करते करते निष्ठा हृदय अधिक होती है। निष्ठा भी कितने प्रकार की होती है, उस भाव को श्री रविश्वर चक्रवर्ती ठाकुर जी ने माधुर कादंबरी में वर्णन किया है। निष्ठा के बाद में अपने आप निष्ठा होते होते निष्ठा में प्रतिष्ठित होकर भजन करते 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 स्वाभाविक रूप में निष्ठा रुचि में परिवर्तित हो जाती है। निष्ठा में आस्वादन नहीं होता है, निष्ठा में स्वाद नहीं आता है, कैसा की मधु मधुर मंगलम मंगला नाम एकदम कैसा मधुर से मधुर नाम में आस्वादन नहीं होता है, परंतु जब निष्ठा में भजन स्थापित होकर हम लोग रुचि में पहुँचते हैं तो वह आस्वादन होने लगता है। पहले तो हम बुद्धिपूर्वक साधन भजन होकर निष्ठा में रुचि में वह स्वाभाविक रूप में होने लगता है। रुचि में भी कितने प्रकार के हैं, यह सब भावों का वर्णन चक्रवर्ती ठाकुर जी ने किया है। रुचि जब रुचि मैच्योर होने लगती है, बढ़ने लगती है, तब साधक आसक्ति में चला जाता है। आसक्ति के मैच्योर होने पर सब सिम्टम बदला है, अलग अलग लक्षण बदलाए हैं। हम लोग कैसे जानेंगे कि हम आसक्ति में खड़े हैं, रुचि में खड़े हैं? इस स्वभावों को भी श्री रघु गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े सुंदर रूप हूँ मास्टर हमें स्वामी जी के कृपा को उपलब्धि करके रघुनाथ स्वामी जी लिखते हैं
Mother.
And Sakshi Mata also, she was explaining to Jagannath Mishra, I have seen many celestial beings offering me Dandavat Pranam. And Jagannath Mishra was explaining, I am seeing your whole body very effulgent. They both understood at this time that a very special personality was manifesting in the womb of Sakshi Mata. Previously, Sakshi Mata had had 8 daughters and they all died. And then they had one son, Vishwaroop. They were so satisfied and pleased with it. But then Chaitanya Mahaprabhu, he remained in the womb of Sakshi Mata for 13 months. Generally 10 months, 9 months is the estimated time when a child will remain in the womb. So Jagannath Mishra and Sakshi Mata became a little worried, disturbed. But it's described how Chaitanya Mahaprabhu was waiting for a very auspicious time. And then at that most auspicious time, Providence provided a lunar eclipse. It was understood that only one moon should be illuminating the universe at the time of Mahaprabhu's advent. So Rahu, he covered the moon that we see in the sky, and the most important moon of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he arose 500 years ago. All of the Brahmanas, all of the worshippers of Vedic literature, they were chanting, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. The whole of Navadvipam, the whole of Bharatvash, the whole world, anywhere where there were devotees, they were all chanting, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Even as described in Muslims, they were imitating. The non-devotees, they were imitating the devotees chanting. So when Mahaprabhu advented, the whole world was luminous with the sound of Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. So Mahaprabhu advented in this very auspicious atmosphere of the chanting of the holy name. And then we have heard so many of his childhood pastimes from the lotus feet of Sri Gurudev. It describes how he was a child, how he was cry until the Brahmin ladies, they would chant, Hare Krishna, Hare Krishna. And then when he was very, very small, even 5, 6 days old, it was described how all the Brahmin wives, the celestial beings also, they were coming and offering pranam to Sri Chaitanya Mahaprabhu. So during his pastimes in Navadvipa, these very, very sweet pastimes, we see him going through the mood of a scholar, how he was such an erudite scholar, how he defeated Keshava Kashmiri. And very beautifully, Gurudev described the other night how in that debate Mahaprabhu showed his erudite personality. But then on visiting his guru in Ishwarapuri in Gaya, then he returned in a much more sober mood. And then more of a devotional sentiment was expressed by him. But this time, Mahaprabhu, even though endowed with the kanti and the mark of Srimati Radhika, still was not actually tasting that mood until he came to the Godavari River with Rai Ramananda discussion, Rai Ramananda Sangvad at that time. So up until this point, his complete tasting of these three very special reasons for his advent was not manifest. But nevertheless, at that time in Navadvipa, so much madhurya, so much sweetness was being demonstrated by Mahaprabhu in his childhood pastime, and then after with Ishwarapuri, when he was chanting with the devotees in Shiva's Angam, the very wonderful kirtans that were taking place. This is described as non-different to the Rasalila in Vrindavan. So Mahaprabhu, he was demonstrating throughout his entire life devotion and attraction to Krishna in the form himself as a devotee. This is most extraordinary. If we describe any of these teachings to a non-devotee, they must become attractive. These features of Mahaprabhu's life are so attractive to all people of this world. It's described that within the heart of the jiva, a shakti or attraction to Krishna is latently there. It's residing in the heart of all jivas. But yet to manifest this, to awaken this ashakti, Mahaprabhu has advented for his own personal reasons, Sri Radhaya Pranayama Mahima, the greatness of Radharani's qualities, he wanted to take Svadhyena Buddha, Sigrisham Madhya, that the Madhurima, the great qualities in Srimati Radharani, he also wanted to take, and the happiness that Radharani experienced from Krishna's own love for her. These so profound reasons that Krishna himself was manifesting to taste his own sweetness will have found any jiva in this world. So this is the greatness of Mahaprabhu's manifestation, completely attracting all jivas to the path of wakening up their natural relationship of to Radha and Krishna. So Mahaprabhu, in his Bhaktivinoda Vrindavadvipa, was so exceptionally sweet and beautiful, especially in Sri Vaishnava, the pastimes, Sri Vaishnava, and all the associates of Vaishnavacharya, and Vasunda, Haridas, Nityananda Prabhu, all these personalities were dancing every night, the most remarkable exchanges of loving affection. Mahaprabhu sometimes would take the form of Vishnu completely, Narayana, and he'd clear Srivast's altar and take his seat there and demand wine from Nityananda Prabhu and take his a mood of Aishwarya, and the devotees would become very intimidated by these moods. And Mahaprabhu at that time, he would give so much mercy to the devotees that other times he would be trying to grab the dust from their lotus feet, and he would be so much in a mood of humility. We see that in his final pastime in Buddhism, many years later, 24 years later, when he gave his only instruction in the Shikshaktika, how his mood of humility was so profound. We see in the first two verses of his Shikshaktika how he's explaining so many tattvas and siddhantas, and then finally this Srinara Sunishena, he's demonstrating this mood of humility, and throughout his life, he's showing these moods in his desire to taste Radharani's moods. So, Mahaprabhu, this very significant quality of humility, Mahaprabhu was demonstrating himself. He's Krishna himself, he's the Lord himself, the Lord of all himself, the supreme personality of Godhead. And yet he's demonstrating the most humble mood as a sadhak, as a devotee, for us to try and find these moods. If the devotee can hear and can try and emulate or follow these moods of deep humility, understanding that Krishna is the supreme personality of Godhead. I am not the supreme enjoyer, but Krishna is the enjoyer. Just now, Savita Didishi was speaking very beautifully about the difficulties we have in our practice, why we're not weeping when we're chanting Hare Krishna, why we're not experiencing ecstatic symptoms. And she's describing how our offenses, and these offenses manifest from not being able to sufficiently understand my insignificance in relationship to Krishna and Krishna's devotee. If the devotee can somehow or other catch up this mood, then his life can be successful and he can hear this sublime holy name that Mahaprabhu came to give to the jiva. Mahaprabhu gave so much every moment of his life, just like the radiant sun is constantly pouring down its mercy day after day. Mahaprabhu is like a million suns. The mercy Mahaprabhu is demonstrating is more than his earthly sun. Every day, our difficulty is our own container has holes in it. And our process is to block up the holes and eventually be able to retain the divine teachings in our heart that Srila Gurudev is giving us as the complete medium to Sri Mahaprabhu. So when we sit here in front of our beloved Gurudev, we understand that he is reflecting all of Mahaprabhu's mercy directly into our heart. So on these days, we are feeling so much indebted, deep gratitude to this personality of our Gurudev, who is holding and containing this and distributing it in exactly the same way as Krishna himself was. Krishna was giving so much through his devotees. When Mahaprabhu, he only gave these eight Shikshasikam instructions, but Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunatha Goswami, we were just hearing, all these personalities, Srila Vishnu Chakravarti Thakur, Baladeva Jitul Shastri, Srila Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, Srila Bhakti Pragyan Keshav Varanasi, Srila Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, all the same mode of just giving, exactly like the brilliant golden sun. This giving of pure affection for each other. Gurudev has been describing for so many years, and our relationships with each other also must be in tune with this mood. If we can, this will break our critical mentality. It describes the nature of a materialist is envy. So the nature of a transcendentalist is opposite to that. It is affection for each other. So if we can develop this mood of affection individually, even in this world, then surely this will purify our envious mentality. And at some point we'll begin to understand the deeper concept that Srimad Mahaprabhu came to give and demonstrate through his whole entire life in the Gambira, his pastime, Swarup, Samana, and Rai Ramananda are breathtaking for the devotees to listen to and hear about. And the his mode of complete humility are shown so strongly, prominently, through his whole life. So at this time, now that we've written about, we are praying deeply for a little particle of these moods to be reflected from Srila Gurudev into our hearts so that we will understand these topics more fully and one day pray to be able to weep when we chant, to experience this attraction to Radha and Krishna, as is our birthright. Srila Gurudev ki jai, Nityananda Prabhu ki jai, Satchinandana Gaura Hari ki jai, go Vrindavanvi.
So you're able to hear?
Very good.
No problem. Ready.
You're able to hear, Prabhu?
Yes, no problem.
कोई भी गुरु जिनके भी जो गुरु हैं
कहा कि गुरु कैसे होने चाहिए, दैट इज डिफरेंट पॉइंट. जो श्री गुरु गुरुदेव हैं वो श्री राधा जी के चरण की जो नक्श की छटा है उससे आविर्भूत होकर पंचीकर आते हैं, और श्री गौर वो राधा जी के भाव को लेकर आते हैं. तो महाप्रभु जी की जो शिक्षाएं हैं वो ही श्री गुरुदेव के माध्यम से हम तक संचरित हो सकती है. श्रीमद महाप्रभु इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे, राधा विनय महिमा का जो ज्ञान है वो उनका वैयक्तिक कहा जा सकता है, लेकिन जो समझ के रूप में उन्होंने काम किया वो भी हमारे लिए विचारणीय है. उस समय यदि साधु सन्यासी परम इत्यादि की जो कर्म से जो डेफिनेशन थी, परिभाषाएं थी, वो बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि महाप्रभु जी करुणा के अवतार हैं और आज और माधुर्य से सरोकार हैं. तो कलयुग के जीव मायावाद और सच्चे सन्यासी को समझ नहीं पाएंगे. कलयुग का जो युगिन धर्म है उसको कैसे ध्वस्त करूंगा, इसकी भी शिक्षाएं उन्होंने अपने विभिन्न परिकरों के माध्यम से दी. महाप्रभु ने जो हमें शिक्षाएं थी उनमें सत्युग में तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में अर्चन और कलयुग में संकीर्तन, इसकी शिक्षा देते वो वहां पर. संकीर्तन से जो नाम उच्चरित हो रहा है तो हमारे सबके हृदय में जो विषय वासना रूपी हाथी समाया हुआ है और बाहरी जगत में जो चकाचौंध हम देख रहे हैं और उसकी माया से हम आवृत हो रहे हैं, तो महाप्रभु का संकीर्तन ही ऐसा अस्त्र है जो हमारे हृदय के इन सब हाथियों को और बाहरी मायावाद को संजाल कर छेदन कर पाता है. महाप्रभु जी ने साधारण जीवों को नाम संकीर्तन और उस नाम संकीर्तन की स्थिति बताई. स्वामी हरिदास ठाकुर उनको अपनी स्थिति में भजन कर पाया. रूप गोस्वामी, श्रीवास सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को भजन की शिक्षा अलग प्रकार से दी. श्री महाप्रभु का जो नाम संकीर्तन है उसने अस्त्र का काम किया, क्योंकि संपूर्ण अवतारों में भगवान जब भी अवतार उनके हाथ में अस्त्र होता है, लेकिन श्रीमद महाप्रभु बिना किसी अस्त्र के इस धरती पर आए थे और नाम संकीर्तन ने उनको पूरे विश्व में उन्होंने जुआ दिया था. और जिस तरह से एक शुद्ध रूप से सबके हृदय में नाम जाना था सारा विश्व उसमें समा गया. आज भी उन्हीं की नाम महिमा से हम सब लोग अपने हृदय का शोधन कर रहे हैं. श्री नवी धाम जहाँ महाप्रभु ने अवतार लिया वो हमारे हृदय के दुर्भावों का परिमार्जन करती है. कल हम परसों जगन्नाथ बाबा जी के मंदिर में गए थे, वहाँ 105 वर्ष के संत रह रहे थे. उन्होंने बताया कि जो भाव भक्ति है वो किस प्रकार से वस्तु सिद्धि और वस्तु उपलब्धि के विषय में जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने महाप्रभु जी की बदान्यता बताई कि भागवत परंपरा में जो हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भजन है, जब वो वृंदावन में भजन कर रहे थे तो वहां से एक स्त्री गई जिसके जो सिर पर एक टोकरी थी, टोकरी में महाप्रसाद रखा हुआ था. जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने उससे पूछा, स्त्री की वो स्त्री पर थी भंगी जिसको कहते हैं, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस टोकरी में क्या ले जा रही हो, तो उन्होंने कहा महाप्रसाद है. जगन्नाथ बाबा जी ने कहा कि अच्छा हमें भी थोड़ा दे दो. किसी ने दे दिया. वृंदावन और मथुरा में पूरे गण मंडल में शोर मच गया कि बाबा जी ये सब क्या करता था. समाज किया, सभा आ गई और बाबा जी सदन होने लगे. बाबा ने कहा कि भाई क्या बात है. उन्होंने कहा कि आप क्या कर डाला, ये क्या हो गया, आपने भजन की टोकरी में से महाप्रसाद खा लिया. तो बाबा जी ने कहा वो बंधन जी मुझे पता ही नहीं, फिर कौन सी हो. बोले वो तो द्वारका में एक पत्रांगी थी जो वृंदावन के भावों को लेकर यहाँ आई थी. तो हम जिस स्थिति का भजन करना चाहते हैं वो महाप्रभु जी ने हमें कि क्या सत्य मार्ग हमसे बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जीव जो है उसका मुख्य तत्व है वो है हरि नाम उपासना, मुख्य तत्व है भगवान श्री गौर की रस उपासना, और दूसरा है नाम उपासना। हमारे चंद गोस्वामी जिस तरह से ग्रंथ लिखने का व्यस्त रहे और संख्या पूर्वक और बिना संख्या पूर्वक नाम संकीर्तन करते रहे और सारे जगत में जो महावदन्य का भाव से ग्रंथ हमें दे गए वो भी श्रीमद महाप्रभु की कृपा से है। जब उनकी सनातन गोस्वामी चलते हैं तो उनके शरीर में घाव है, कुछ जैसा रोग हो गया है, फिर भी महाप्रभु उनसे गले मिलते हैं। तो उन्होंने वैष्णव का की हमें शिक्षा दी और दीनहीनता का पाठ पढ़ाया। पाठ पढ़ाते पढ़ाते महाप्रभु ने बताया ना जन्म ना जन्म ना सुमति काम है, घर भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी भक्ति करते करते हमारे अंदर प्रतिष्ठा की भावना आ जाती है कि मेरी बातों को सुनने वाला कोई तो हो, मेरी प्रतिष्ठा का धारा तो बनना चाहिए। महाप्रभु ने कहा मुझे जन्म भी नहीं चाहिए, इसीलिए जब आज हम चंपा घट पे गए तो वहाँ जब चंपा घट पे श्री जयदेव गोस्वामी राधा कृष्ण की चंपा पुष्पों से पूजा कर रहे थे तो एक दिन चंपा पुष्पों से सुसज्जित भगवान श्री कृष्ण गौर रूप में प्रकट हो गए। वो आश्चर्य से देखने लगे, अपनी पत्नी पद्मावती को बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो कितना सुंदर रूप है। तो उन्होंने हतप्रभ होकर जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि ये मैं चैतन्य महाप्रभु हूँ और तुम अब जगन्नाथपुरी चले जाओ, तुम्हारे द्वारा रचा गया जो गीत गोविंद है मैं अपने जीवन के उत्तरार्ध में उसका रसा स्वादन करूंगा। तो श्रीमद महाप्रभु ने अपनी पूरी व्यवस्था बनाई थी, अद्वैताचार्य जी ने जो महाविष्णु तत्व है या किसी की जो श्रीमद सदाशिव तत्व है उन्होंने महाप्रभु जी को नीचे बुलवाया, अवतीर्ण करवाया, भूतल में बुलवाया। तो अद्वैताचार्य के साथ जब वो उनको गुरु मान रहे थे कि मेरा अपराध हो जाएगा, श्रीमद महाप्रभु मेरे जैसे जीव जीव व्यक्ति को यदि गुरु बनाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा। तब श्री अद्वैताचार्य जान बूझ कर उपनिषद इत्यादि का माया पर जो वैष्णव तत्व से वैष्णव जो विषय है उसका प्रतिपादन करने लगे। श्रीमद महाप्रभु ने कहा कि अब ये रुकेगा और नाना नाना कहकर उसका क्रोध करने लगे। इतना ही नहीं, जब श्रीमद अद्वैताचार्य की कृपा से उनके भाई विष्णु चले गए थे और सती माता उन पर क्रोधित हो गई थी तो महाप्रभु ने अपनी माता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वैष्णव अपराध करके मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें श्रीमद अद्वैताचार्य के चरणों में अपनी क्षमा याचना करनी पड़ेगी। श्रीमद महाप्रभु बार बार ये भगवान श्री कृष्ण से कहे गंगा के किनारे विभिन्न प्रकार से लीलाओं को आस्वादन कराते रहे, कभी उन्होंने ब्राह्मण के साथ बार बार भोजन करके उसको आहार करते रहे। श्रीमद महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति के अवतार है, प्रतिमूर्ति है। श्रीमद महाप्रभु जब गीत गोविंद का रसा स्वादन करते थे जगन्नाथ पुरी में, गीत गोविंद क्या है, भगवान जगन्नाथ ग्रह ग्रह के आवेश में है, श्री मन महाप्रभु वृंदावन में ग्रह की राधा के रूप में जगन्नाथपुरी में ग्रह की राधा के रूप में है और वही श्री गीत गोविंद में हमें मिलता है। गीत गोविंद का रसा स्वादन करते करते महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे, उनकी जो भावना है उनका जो चित्त बल है वो सब डूब जाते थे, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते थे। उनके जो संपूर्ण सेवक थे सब नामक है, यद्यपि राय रामन इत्यादि के साथ उन्होंने उन्हीं को सम्मान दिया कि श्री राय जी आप परम ज्ञानी है, आप ही बताइए कि भक्ति रस सत्य क्या होता है। इसी तरह से वो सर्व दामोदर साथियों को सम्मान वो सबको सम्मान देने की जो प्रथा है श्रीमद महाप्रभु से चली आई। श्रीमद महाप्रभु ने श्री नवी धर्म लेकर हम सबके अपराधों को भंजन करने का रास्ता बताया। मंडल जग मंडल करे ललित वन मार जय जय देव हरि। क्यों उनकी उपासना कैसी है? उनकी उपासना है सिद्ध कमला कुछ मंडल श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहती है और लीला कर रही है। उसी लीला से उनका प्रथम दिन शुरू होता है और स्वयं नंद बाबा आकर उनकी सुख्यति देते हैं और कहते हैं कि हे राधे ये कपटी बंदर ने आवाज करना शुरू कर दिया है। शुभ और सारी बोल रहे हैं वो तो अपने अपने घर की ओर चली है। वो श्री राधा जो हमारी गौड़ परंपरा है रस तू पर परिया में ही रस है तो संभा प्रभु जी ने स्थापन करवाया। उन्होंने जो नाम दिया उसने कोई विधान नहीं रखा। हंसते बैठते सोते जाते हर समय हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरे कृष्ण और इतना ही नहीं हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ बताया। श्री जी गोस्वामी के अनुसार श्री जगन्नाथ दास गोस्वामी के अनुसार श्रीमद कृष्णा के स्थापना के अनुसार हमें अर्थों से अनुगत पूजन करना चाहिए। गंभीरा लीला में श्रीमद महाप्रभु खोए रहते थे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बढ़े बनवाती। वहाँ पर जब कृष्ण आता है और राधिका जी इसमत गरज खंडना इसमत क्या काम दे और गरज क्या फिर काम दे के फिर कला खंडन किया जा रहा है। ऐसी चीज गोविंद में जो परमात्मा का आकाश ही समझते हैं उनके जीवन को धिक्कार है। भजन की ऊंची परिपाटी पूर्ण परिपाटी अंतिम हृदय का भाव जीत गोविंद में है। गंभीरा लीला में श्री कृष्ण आते हैं और राधिका से कहते हैं पंच पांच चंद पांच प्राण न जाए मेरे निज अपराधी को अवरज से छेदो तुम ही सवेरे और बांध लो बांध लता के बंधन में अति मोह को पीड़ा हरो मेरी हस बोलो बंदी मुक्ति न तुझको तो मार रही क्यों पंचम स्वर में बोलो करती हृदय के सारे बंधन खोलो जो तुम्हार है तो भी तुम्हारा अगर आज बना है कलम इसने अति है सब किए ये मुक्ते सजल खड़ा। तो भगवान श्याम सुंदर आते हैं महाप्रभु जी के आस्वादन देखिए लीला का आस्वादन और श्री राधा जी के सामने अपराधी की भांति गिर पड़ते हैं माफी मांगते हैं। श्री राधा तुम कभी ये मत समझो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास गया ऐसा तुम कभी मत सोचना। तो राधिका कहती है अच्छा तुम नहीं गए थे तो तुम्हारे अर्थन पर सच्चे निशान क्यों दिखाई देते हैं तुम्हारे वस्त्र स्तर कुमकुम रंग से रंजित क्यों दिखाई दे रहा है तुम्हारी आंखें रखना भी क्यों दिखाई दे रही है श्याम सुंदर। और राधिका मान कर लेती राधिका को उनकी सखी भेजती है जैसे वातावरण में अभी राधिका नायिका बनाकर अर्धरात्रि है और राधिका देख रही है कि चंद्रमा गगन पर उदित होता चला जा रहा है और श्याम सुंदर अभी नहीं आए। चंद्र चंद्र गगन में लख कर खरी आगम में बाधा बिलख बिलख परिताप मलिय जो उठती है राधा संकेत समय पर न कुंज में आए विफल रूप न यौवन मेरा जो न उन्हें ये खाए। यौवन किस काम का है ये मेरा रूप किस काम का है यदि वो काम हुए तो आकर्षित नहीं करता। यदि राजा के संदर्भ में हमारे संदर्भ में भी हमारी प्रक्रिया कोई इंसान एक आ है यदि वो हमारे गुरु और भगवान के लिए किसी को लोहा नहीं करता हमारे जीवन को भी निस्कार है यदि उसका एक एक क्षण बहुत श्याम सुंदर श्रीमन महाप्रभु श्री चंद्र साहब उनके चरणों में अर्पित न हो जाए। श्री गीत गोविंद के भाव और श्रीमन भागवत का महाप्रभु की गंभीर लीला में अर्चन करती रहे। महाप्रभु ने पाठ कुमार का विचार नहीं किया संपूर्ण रूप से वर्षण किया अपनी कृपा का इच्छा शक्ति श्री कृष्ण कृपा के ऊपर अधिक करती कि वो किसी पर दया करेंगे या नहीं करेंगे। महाप्रभु ने आकर श्री राधा जी के भावों से अपना औदार्य भाव का वर्णन किया और आज भी उस पर
भक्ति के कारण माधव महाराज जी कुछ बोलेंगे।
Hello, can you hear Prabhu?
Yes, no problem. They're ready.
Hello.
Hi, Bill.
Hello, can you hear Prabhu?
Yes, everything's fine.
Yeah, right, thank you.
Thank you, ready.
So if we start So, before we begin my speech, I would like When
So they said, why don't you study the doctor? Why don't you act like other Sannyasis? Why aren't you brave? Why are you running around chanting like a sentimentalist, like a madman? He said, my spiritual master considered me a great fool. He considered me unqualified to study the doctor. So he was giving me the mantra, and he told me to chant this day and night. And I found that by chanting this mantra, I became like a madman. And I asked my spiritual master, what kind of mantra have you given me? And my spiritual master is very pleased. So, not that we are not meant to study. Not at all. But, if study will not take effect, unless we put into practice the principles. Now, I just want to read one little thing. In his own progression operation, the Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura has said, in number 6, that he received this instruction from Srila Bhakti Vinod Thakura, that to publish and distribute transcendental literature and to teach Hare Krishna through non-public programs, I consider real service to Srila Mayapur. We have come to Srila Mayapur, Srila Mayapur, to soak up the mood of service, to try to understand this meaning, to enter into this mood. But how are we preparing ourselves? We don't just come here without any preparation. That preparation is daily from our time away from the job by chanting, by preaching, by spreading this Krishna consciousness. Srila Bhakti Vinod Saraswati Thakur said to print and publish, distribute, transcendental literature, and to preach through non-practice programs. This is real service to Srila Mayapur. And this we can take this mood. Every day when we are supposed to go out, what are we doing? We're supposed to follow in the footsteps of the hospital. That doesn't mean just chugging along, talking with each other, although sometimes we do, we're catching up, and the kids aren't running too far ahead and we can't hear. But actually, the real benefit comes by being right by that cart, right by that spinner, right by that drum player, and enthusiastically chanting, not the time to turn, not on Hare Sankirtan. This is how you will enter into this mood. This is very necessary instruction. This is what we're supposed to do. There is a group who always come into and come into the association of the doctors, and they hear about chanting, they hear about all principles of devotional service, but there are always some who have a tendency to go and want to do solitary bhajan, to go out to run accordance and to enter into some deep meditative state, chanting Hare Krishna and thinking about Radha and the gopis and Radha clothes. I want to enter into my bhajan deeply. But, according to Srila Bhakti Vinod Thakura, this is not the mood of the heart of the mood. He says, does everybody read this? Do you know this book? Do you know where this is in the song book? Have you read this? We should read this. We should study this. It says that, first of all, the Anga Apati, known as Kirtan, is the best and most complete little apati. But, how to perform it? It says to speak Hare Krishna always and everywhere, and being absorbed in speaking about services related to Krishna is real silence before a man preaching Hare Krishna always and everywhere is real Hare Krishna. And not to go off into the solitary bhajan of the Bible, which is the Radha Purim, but to stay in the association of the devotees doing group preaching, group sankirtan. This is the mood of Mahaprabhu and his associates. There may have been some very advanced devotees, which is part of the Thakur, who spent a great deal of time in solitary bhajan, but they also spent a great deal of time in the association of Mahaprabhu and the kirtan party. So, this was my far realization, the small thing I wanted to share. Thank you very much. If you give any thoughts or questions, আজকে আমাদের চতুর্থ দিবস পরিক্রমা সুষ্ঠু ভাবে সুসম্পন্ন হল। আগামীকাল মনোষ্টম দিন, তো আমরা সকাল ৫টার সময় যেভাবে আমরা পরিক্রমায় যাচ্ছি সেইভাবে আমরা সকালে ৫টায় আমরা এই স্থান থেকে রওনা হব। আর কালকের পরিক্রমা অনেকের ধারণা অনেক বেশি লম্বা অনেক দূর, তাহলে আজকের যেহেতু অর্ধেক পরিক্রমা আগামীকালের অর্ধেক পরিক্রমা আমরা আজকে করে ফেলেছি, এই জন্য পরিক্রমা খুব সংক্ষেপ ছোট পরিক্রমা আছে, শুধু যাওয়া রাস্তা বেশি দূর নাই অল্প দূর রাস্তা, তো কেবল জাহানগর জন্মভূমি স্থান এবং মাম জাতি মদর জমি শ্রী সারঙ্গ মুরারির পাঠ এবং মাম জাতি মদর জমি আমরা দর্শনে যাব, সেই স্থান থেকে আমরা ফিরে আসবো। অর্থাৎ দূরের মধ্যেই আমরা বারটার মধ্যে আমরা নিশ্চিত রূপে ফিরে আসবো, তাহলে আশা নেই দর্শন করতে So please, everyone should be ready. I would love morning. Yara, my name is Kandita. After it, after a round, you see it again. Yara, my name is Kandita. So we are going to
Tomorrow afternoon, 4 o'clock, there will be a Zen performance by one of the Orient style dance. It will last about half an hour. If you want back in time, you are welcome to come here and be at the department. Also, all the colleagues, Western employees, who have not registered yet, kindly fulfill this responsibility. How much snack time you are receiving, you cannot store it. So, really come on. That thing which you brought and give a donation, contribution for our Parikram Festival. On the room, we also do another awareness of the temple building. There will be Krishna for all Western devotees here every day.
Thank you.
Hello.
Haribo.
Hare Krishna Prabhu. Guruji has left the stage.
Okay. We can either listen to Kirtan or go off, whatever you want.
Hello. Just a minute. Can you hear me, Prabhu?
Yes.
What? Hello?
Haribo? Dhanyavaad.
Just a minute, Prabhu.
Oh, no.